नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों से संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखने और उनसे अच्छे आचरण का आग्रह। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा जारी। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम लोकसभा में प्रस्ताव का जवाब देंगे। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 19 जिलों के 6 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित, गुजरात, उत्तराखंड और बिहार में मूसलाधार बारिश। और 2020 क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम कैरेबियन सागर में बेरिल तूफान के कारण बारबाडोस में फंसी। दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों से संसद के नियमों का पालन करने, संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप चलने और अच्छा व्यवहार करने का आग्रह किया है। नई सरकार के गठन के बाद नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की पहली बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही। बैठक के बाद मीडिया को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री ने एनडीए के सभी सांसदों से अच्छा आचरण करने को कहा।
सारे एनडीए के सांसदों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह है, अच्छा सांसद बनने के लिए जो आचरण की आवश्यकता है वो पूर्ण रूप से अपनाएं और हम नियम के साथ और पार्लियामेंट्री जो कन्वेंशन है, ट्रेडिशन है, उसी के साथ पेश आना चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन रही है, मैं मानता हूं कि हर एक एमपी को, खास करके जो पहले बार चुन के आए हैं, ऐसे सांसदों के लिए बहुत अच्छा मंत्र दिया है।
प्रधानमंत्री ने सांसदों से उनकी पसंद के विषयों जैसे जल, पर्यावरण और सामाजिक क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। श्री मोदी ने सभी सांसदों से अपील की कि वे अपने परिवार को प्रधानमंत्री संग्रहालय दिखाएं। श्री रिजिजू ने कहा कि संग्रहालय में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की यात्रा को बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का आज शाम लोकसभा में जवाब देंगे। वे कल राज्यसभा में भी धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे। नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। इस बीच संसद के दोनों सदनों में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा फिर से शुरू हुई। लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत के दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बावजूद प्रति व्यक्ति आय अब भी कम है।
कहने को सरकार ये कहती है कि ये फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और जीडीपी के मामले में फिफ्थ वर्ल्ड की इकोनॉमी बन गई है, लेकिन अध्यक्ष मोदी सरकार क्यों छिपाती है कि अगर ये हमारी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी, अगर हम पांचवें नंबर पर हैं तो हमारे देश की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय हमारे किस स्थान पर पहुंची है।
तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव परिणाम विपक्ष की नैतिक जीत है। उन्होंने सरकार की आलोचना के लिए रेल दुर्घटनाओं का मुद्दा भी उठाया। भाजपा के संतोष पांडेय ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कल कथित तौर पर एक समुदाय विशेष पर की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताई।
संसद के अंदर आपने शुरुआत की है, संसद के अंदर चिल्ला चिल्ला करके आपने जिस प्रकार की बातें की है, यहाँ की परंपराओं को तोड़ने की कोशिश की गई है, मर्यादा को तार तार करने की कोशिश की गई है, किंतु हमारी ये उच्च परंपरा रही है, इसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। राहुल गांधी जी, ये संसदीय पाठ क्या पढ़ा है?
भाजपा के सौमित्र खान ने पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर कथित अत्याचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने राज्य में महिलाओं के खिलाफ कथित अत्याचार का मुद्दा भी उठाया। एक अन्य भाजपा सांसद दिलीप सैकिया ने सदन में कल की गई टिप्पणी पर राहुल गांधी से माफी की मांग की। राज्यसभा में चर्चा में भाग लेते हुए असम गण परिषद के बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य ने असम के 6 समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का मुद्दा उठाया। भाजपा के सांसद अशोक राव चव्हाण ने कहा कि चुनाव के दौरान एक गलत धारणा स्थापित की गई कि उनकी पार्टी संविधान को बदलने का इरादा रखती है। श्री चव्हाण ने नीट परीक्षा मुद्दे के बारे में कहा कि दोषियों पर मामला दर्ज किया जाना चाहिए और निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए और सरकार का रुख इस बारे में स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में पिछले 10 वर्ष में सरकार की उपलब्धियों और भविष्य के रोडमैप के बारे में बात की। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि देश में महंगाई रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में मणिपुर अशांति का भी कोई जिक्र नहीं था। टीएमसी सांसद मोहम्मद नदीमुल हक ने अपने भाषण में मांग की कि सरकार को केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को जारी की गई धनराशि पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी कुछ टिप्पणियों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उन पर आपत्ति जताई और कहा कि किसी को निजी हमले नहीं करने चाहिए। डीएमके के केपी विल्सन ने कहा कि नीट आधारित परीक्षा प्रणाली समाज के गरीबों और वंचित वर्गों के खिलाफ है। दोनों सदनों में चर्चा जारी है। इससे पहले केरल से राज्यसभा के 3 नवनिर्वाचित सांसदों हैरिस बीरन, जोस के मणि और पीपी सुनीर ने शपथ ली। केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कल की टिप्पणी को लेकर आलोचना की। श्री सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि श्री गांधी तथ्य पेश करने के बजाय सिर्फ आरोप ही लगाते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा का शुल्क दोगुना से अधिक $710 से बढ़ाकर $1600 कर दिया है। इस निर्णय से ऑस्ट्रेलिया जाने की योजना बना रहे लाखों भारतीय छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा। इस फैसले से छात्रों में आक्रोश है। एक महत्वपूर्ण बदलाव में अब समुद्री वीजा आवेदनों की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका अर्थ यह है कि आवेदकों को अब ऑस्ट्रेलिया से नहीं बल्कि विदेश से वीजा आवेदन जमा करना होगा। इससे अस्थायी स्नातक, आगंतुक और समुद्री क्रू वीजा वाले लोग अब ऑस्ट्रेलिया में रहने के दौरान छात्र वीजा के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 1 जुलाई से अस्थायी स्नातक वीजा के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की आयु सीमा 50 से घटाकर 35 वर्ष कर दी है। कनाडा, न्यूजीलैंड, अमरीका और ब्रिटेन की तुलना में ऑस्ट्रेलिया का वीजा आवेदन शुल्क सबसे अधिक है। कजाकिस्तान की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन SCO परिषद के प्रमुखों की 24वीं बैठक 4 जुलाई को आयोजित होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन में विश्व नेता संगठन की पिछले 2 दशक की गतिविधियों की समीक्षा और बहुपक्षीय सहयोग की स्थिति और संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि 3 नए आपराधिक कानून देश में आधुनिक न्याय प्रणाली का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि न्याय प्रणाली अब पूरी तरह से स्वदेशी है और आजादी के बाद भारतीय लोकाचार में अंतर्निहित है। श्री शाह कल नई दिल्ली में 3 आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नए कानून त्वरित न्याय और पीड़ितों के अधिकार सुनिश्चित करेंगे। इस बीच झारखंड के पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने कहा है कि राज्य में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में पुलिस अधिकारियों को अब तक किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि देश में लागू हुए नए आपराधिक कानूनों से अधिक संख्या में अपराधियों को सजा दिलाने में मदद मिलेगी।
तीनों जो कानून थे वो 100 साल से अधिक से इस्तेमाल में थे। अब अचानक कोई भी नई चीज शुरू होती है तो उसमें कुछ ना कुछ चुनौतियां, कुछ ना कुछ परेशानी आती है, लेकिन उसके लिए प्रशिक्षण और बाकी जो संसाधन है वो सब मुहैया किए गए हैं और अगर जो नहीं हो पाए इनको किया जाएगा। जहां तक आगे चुनौती की बात है तो उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे थ्योरेटिकल चेंजेस हुए हैं, खासतौर से जैसे फॉरेंसिक का जो रोल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून देश के सभी हिस्सों में पहुंच गया है। मॉनसून ने पूर्व निर्धारित समय से 6 दिन पहले ही देश में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों में भी पहुंच गया है। गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज वर्षा हुई। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, असम और मेघालय में बहुत तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में आज कहीं कहीं बहुत तेज से अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मूसलाधार वर्षा की चेतावनी के मद्देनजर कुमाऊं क्षेत्र के सभी जिलों में आज विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है।
उत्तराखंड में मॉनसून पूरी तरह पहुंच चुका है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज सुबह से ही रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश की भी खबर है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कुमाऊं मंडल में बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट 4 जुलाई तक जारी रहेगा। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए आम जनता और पर्यटकों को सतर्क रहने को कहा गया है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
दक्षिण पश्चिम मॉनसून बिहार के सभी हिस्सों में सक्रिय है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में अत्यधिक वर्षा हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
हिमालय के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नेपाल से निकलने वाली नदियां पूरी तरह उफान पर हैं। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोसी नदी का जलस्तर सुपौल और बलतारा में चेतावनी के स्तर को पार कर गया है। कोसी की सहायक नदियां महानंदा और परमान, तैयबपुर, किशनगंज, ढेंगरा घाट, अररिया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बरसाती नदियों में पानी तेजी से बढ़ने के कारण सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिले में निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। गंडक, बागमती, कमला बलान और इसकी सहायक नदियां गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और मधुबनी में उफान पर हैं। भारत नेपाल सीमा पर सोनबरसा बाजार क्षेत्र में झीम नदी का पानी सड़क पर बह रहा है। जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए जल संसाधन विभाग के बाढ़ निरोधक दल को अलर्ट पर रखा गया है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के 19 जिलों में 6 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। एक रिपोर्ट।
भारी बारिश और अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी बांध से अतिरिक्त पानी सोरे जाने के कारण असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। आज सुबह एयरफोर्स ने डिब्रूगढ़ जिले के बाढ़ प्रभावित हथियाली चार में फंसे 13 मछुआरों को एयरलिफ्ट किया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए आज दोपहर गोलाघाट जिले का दौरा करेंगे। सीएम ने सभी अभिभावक मंत्रियों को तुरंत बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र खोले हैं और बचाव एवं राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों को भी तैनात किया गया है। अमीनुल हक जुद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राजधानी ईटानगर और पापुमपारे जिले में प्रशासन ने स्कूलों को अगले 5 दिन तक बंद रखने की घोषणा की है। उधर तूफान बेरिल से आज विनाशकारी तूफान में तब्दील हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रीय तूफान केंद्र के अनुसार इसके प्रभाव से मकानों को क्षति पहुंची है और ग्रेडा के कराईको द्वीप पर भूस्खलन हुआ है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पूरे क्षेत्र में संचार सुविधाएं प्रभावित हुई हैं। इस बीच 2020 विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम तूफान बेरिल के कारण पिछले 2 दिन से बारबाडोस में फंसी हुई है। तूफान के कारण हवाई अड्डे और कारोबारी गतिविधियां बंद हो गई हैं। तूफान को कल श्रेणी 4 में अपग्रेड कर दिया गया था। इसके कारण बारबाडोस और आसपास के द्वीपों में तूफानी हवाएं चल रही हैं। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज शुरूआती कारोबार में 379 अंक बढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर 79,855 पर पहुंच गया है। निफ्टी भी 94.4 अंक की बढ़त के साथ 24,236 पर आ गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों से संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखने और उनसे अच्छे आचरण का आग्रह। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा जारी। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम लोकसभा में प्रस्ताव का जवाब देंगे। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर। 19 जिलों के 6 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित। गुजरात, उत्तराखंड और बिहार में मूसलाधार बारिश। और 2020 क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम कैरेबियन सागर में बेरिल तूफान के कारण बारबाडोस में फंसी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।